हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अर्णव ने उन ख्यालों को खुद पर हावी होने से रोकते हुए पूल के किनारे कदम बढ़ा दिए। धृति को ढूंढते हुए जब अर्णव पूल के किनारे पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। पूल के किनारे धृति फर्श पर पेट के बल बेतरतीब ढंग से लेटी हुई थी और पूरी तरह भीगी हुई थी। अब भी उसने वही रात के कपड़े पहने थे, न कपड़े बदले थे और न ही ज्वेलरी उतारी थी। जैसे पार्टी में गई थी वैसे ही फर्श पर पड़ी हुई थी। रात भर हुई बारिश का पूल का पानी उफान मारकर फर्श पर बिखर गया था। उसी पानी के बीच धृति पड़ी थी, बिल्कुल बेजान सी। धृति को इस हालत में देखकर एक पल को अर्णव की धड़कनें ही थम गईं और मन में डर बढ़ने लगा कि कहीं धृति को कुछ हो ना जाए। एक पल के लिए उसके कदम ठिठके, पर अगले ही पल वो बदहवास सा उसकी ओर दौड़ गया। उसके पास जैसे ही उसने धृति को स्पर्श किया, अगले ही पल घबराकर उसने अपना हाथ पीछे खींच लिया। धृति का बदन भट्ठी सा तप रहा था, जैसे किसी में तपती आग उसके सामने रख दी हो, जिसकी लपटें उसके बदन को झुलसाने को काफी हों। जाने कब से वो यहाँ थी, पूरा बदन तप रहा था, सिर से पैर तक पूरी तरह से भीगी हुई थी वो, और जाने कितनी देर से पानी में थी कि उसकी त्वचा फूल गई थी और चेहरे से लेकर बदन बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था, जैसे उसके जिस्म से सारा खून निकाल लिया गया हो। होठों का रंग भी बदल गया था। धृति को इस हालत में देखकर अर्णव का दिल तड़प उठा और वो खुद को ही कोसने लगा कि उसे कल धृति को उस हालत में अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहिए था। अर्णव ने जल्दी से धृति को अपनी बाहों में उठाया और कमरे में आकर उसे काउच पर लिटा दिया, क्योंकि वो गीली थी। अगर बिस्तर पर लिटाता तो बिस्तर भी गीला हो जाता। धृति के गीले कपड़ों को देखते हुए अर्णव ने तुरंत ही शीला को बुलाकर उसके कपड़े बदलने को कहा। धृति को पूरा भीगा और बुखार से तपता देखकर शीला के मन में सवाल तो कई उठे, पर अर्णव से सवाल करने की हिम्मत न कर सकी और चुपचाप सिर झुकाए उसकी बात मानते हुए धृति के कपड़े बदलने लगी। अर्णव इतनी देर बेचैनी से बाहर चहलकदमी करते हुए डॉक्टर के आने का इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद सामने से डॉक्टर जल्दबाजी में आते नजर आए तो अर्णव उन्हें लेकर अंदर चला आया। उसने धृति को बिस्तर पर लिटाया और डॉक्टर उसे चेक करने लगे। अर्णव की विचलित घबराहट भरी निगाहें धृति पर टिकी थीं और चेहरे पर अनेकों भाव उमड़ घुमड़ कर रहे थे। एक तरफ खड़ी शीला अर्णव के चेहरे के भावों को गहराई से ऑब्जर्व कर रही थी। डॉक्टर ने धृति को चेक किया, उसके पैरों के जख्मों की ड्रेसिंग की, उसे इंजेक्शन लगाया, फिर प्रिस्क्रिप्शन पर कुछ लिखने के बाद अर्णव के पास आए और उसके परेशान चिंता भरी निगाहों को खुद पर टिके देखकर प्रिस्क्रिप्शन उसकी ओर बढ़ाते हुए बोले, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, धीरे धीरे बुखार उतर जाएगा, पर पूरी तरह से ठीक होने में अभी कुछ वक्त लगेगा। उन्हें अभी आराम की जरूरत है, तो मैंने नींद की हल्की गोली भी दी है। दवाई के असर से उनका माइंड और बॉडी पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएंगे और वे गहरी नींद में सो जाएंगी, तो घबराइएगा नहीं, 11-12 बजे तक होश आ जाएगा उन्हें। ये दवाइयाँ मंगवा लीजिएगा और उनके उठने पर कुछ हल्का फुल्का खिलाने के बाद उन्हें ये दवाइयाँ दे दीजिएगा। मुझे इनके शरीर में काफ़ी कमजोरी लगी, तो इनके खाने पीने का विशेष ध्यान रखिएगा और जितना हो सके स्ट्रेस से दूर रखिएगा। जितना मन शांत और शरीर में ताकत रहेगी वे उतनी ही जल्दी ठीक हो जाएंगी। पैरों में छाले से जख्म बन गए हैं तो 2-3 दिन बेड रेस्ट दीजिएगा। जो दवाई लिखी है उसे दिन में 3-4 बार पैरों में लगाइएगा। 2-3 दिन में वे और उनके पैर पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। वैसे तो इन दवाइयों से ही वे पूरी तरह ठीक हो जाएंगी, फिर भी अगर जरूरत हो तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा। अर्णव ने ध्यान से उनकी सारी बातें सुनी, फिर एक नज़र बिस्तर पर खामोशी से लेटी धृति को देखने के बाद सिर हिलाते हुए डॉक्टर के साथ बाहर निकल गया। उसने नौकर से धृति की दवाइयाँ लाने को कहा और खुद अंदर आया तो शीला धृति के पास बैठी उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टियाँ कर रही थी। अर्णव को देखते ही वो हड़बड़ाहट में उठ खड़ी हुई और सिर झुकाते हुए बोली, सर वो मैडम को बहुत बुखार है तो ठंडे पानी की पट्टियाँ कर रही थी, इससे बुखार जल्दी उतर जाता है। तुम जाओ, मैं ये कर लूँगा। अर्णव के शांत शब्द जैसे ही शीला के कानों में पड़े, उसने चौंकते हुए सिर उठाया और आंखें बड़ी बड़ी करके उसे देखते हुए हैरानगी से बोली, सर आप करेंगे? क्यों नहीं कर सकता? क्या मैं अपनी वाइफ का ख्याल नहीं रख सकता? अर्णव ने भौहें उठाते हुए उल्टा उसी पर सवाल दागा। उसके सवाल सुनकर शीला और ज्यादा चौंक गई, पर जब अर्णव ने भौहें सिकोड़कर उसे घूरा तो उसने तुरंत हड़बड़ी में सिर हिलाया और माफी मांगते हुए वहां से चली गई। अर्णव ने दरवाजा बंद किया, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए धृति की ओर कदम बढ़ा दिए। अर्णव धृति के पास आकर बैठ गया और उसके मुरझाए बेनूर चेहरे को एकटक देखने लगा, जिस पर अब भी दर्द की छिटपुट बूंदें बिखरी हुई थीं। झुकी पलकों में जाने कितने दर्द और आंसुओं को समेटा हुआ था उसने कि बेहोशी में वो दर्द और उदासी उसके चेहरे पर झलक रही थी। उन खामोश लबों पर जाने कितने अल्फाज आकर ठहरे थे, उस खामोशी के पीछे जाने कितने सवाल, कितनी ही शिकायतें गूंज रही थीं। धृति के चेहरे को देखते हुए अर्णव की निगाहें उसके ऊपरी होंठ पर स्थित तिल पर पड़ीं और अर्णव चौंक गया। इतने दिनों में, या यूं कहें कि धृति के साथ रहते उसे महीने भर से ऊपर हो गया था, पर पहली बार उसे ये तिल नजर आया था जिसने उसकी खूबसूरती को और बढ़ा दिया था, और साथ ही अर्णव के मन में कई सवालों को जन्म दिया जिसके जवाब सिर्फ धृति दे सकती थी। इसलिए फिलहाल अर्णव ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। अर्णव ने धृति के दिल पर अपनी हथेली रखी तो उसके सीने में मौजूद दिल बहुत धीमे से धड़क रहा था। अर्णव ने दूसरी हथेली को अपने सीने पर रखा तो वही हाल उसके दिल का भी था। अर्णव ने अब आगे बढ़कर धृति के माथे को अपने लबों से चूमा। धृति की तपती सांसों ने अर्णव के चेहरे को स्पर्श किया और उसका दिल बेचैनी से भर गया। अर्णव जल्दी से पीछे हटा और ठंडे पानी में पट्टी भिगोकर उसके माथे पर रखने लगा और साथ ही हर कुछ देर में उसका बुखार भी चेक करता रहा। जब बुखार कम होता तो उसे कुछ राहत मिलती। करीब दो घंटे बाद धृति का बदन एकदम ठंडा हो गया। अर्णव ने चैन की सांस ली और उसे ठीक से ढकने के बाद बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद फ्रेश होकर नहाकर कपड़े बदलकर बाहर आया तो शीला की आवाज उसके कानों में पड़ी। वो दरवाजा खटखटाते हुए उसे पुकार रही थी। अर्णव ने अपने गीले बालों को तौलिए से पोंछते हुए गेट की ओर कदम बढ़ा दिए। क्या हुआ शीला? गेट खोलते हुए उसने सामने खड़ी शीला से सवाल किया, जिस पर उसने नजरें झुकाते हुए जवाब दिया, सर नीचे कबीर सर आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। कबीर? अर्णव ने मन ही मन दोहराया, फिर उसके अचानक आने की वजह सोचते हुए बोला, उन्हें बिठाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। शीला सहमति में सिर हिलाते हुए वहाँ से चली गई। अर्णव वापस कमरे में आया। उसने धृति के माथे पर हाथ रखकर एक बार उसका तापमान चेक किया, फिर गीला तौलिया सुखाने के लिए डालकर कमरे से बाहर निकल गया। सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए उसकी नज़र सामने ड्रॉइंग रूम में सोफे पर बैठे कबीर पर पड़ी, जो पूरी तरह से तैयार था, शायद ऑफिस जा रहा था या जाने वाला था। जबकि अर्णव कैजुअल वी नेक टी शर्ट और नीचे ट्राउजर पहने अपने गीले बालों को अपनी उंगलियों से सेट करते हुए नीचे आ रहा था। तो इस वक्त अचानक यहाँ कैसे? अर्णव ने कबीर के पास पहुँचते ही उससे पहला सवाल यही किया, जिस पर कबीर ने सहजता से जवाब दिया, ऑफिस के लिए निकल रहा था, रास्ते में पता चला कि तू आज ऑफिस नहीं आ रहा तो सोचा एक बार मिलता चलूँ तुझसे और पूछ भी लूँ कि अचानक छुट्टी कैसे ले ली तूने, कभी ऐसा करता तो नहीं।
कबीर का सवाल सुनकर अर्णव की आंखों के सामने धृति का चेहरा उभर आया और माथे पर कुछ सिलवटें बिखर गईं, साथ ही चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए, जिन्हें कबीर बड़ी ही गहराई से देख और ऑब्जर्व कर रहा था। तभी उसके कानों में अर्णव के कहे शब्द पड़े, कुछ खास वजह नहीं, बस धृति की तबीयत कुछ ठीक नहीं तो उसके साथ रुक रहा हूँ। क्या हुआ धृति को? कल तक तो बिल्कुल ठीक थी। धृति का नाम सुनते ही कबीर पैनिक कर गया। उसे यूं परेशान होते देखकर अर्णव ने शांत स्वर में आगे कहा, इतनी भी बड़ी बात नहीं है, बस हल्का सा बुखार है, एक दो दिन में ठीक हो जाएगी। अगर इतनी ही बड़ी बात नहीं तो तू छुट्टी क्यों ले रहा है? अब ये तो बोलियो मत कि उसे हल्का बुखार आया और तुझे उसकी इतनी चिंता सताने लगी कि एक पल के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता, इसलिए छुट्टी लेकर उसके साथ रहना चाहता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए अब झूठ बोलना बंद कर और सच सच बता कि क्या हुआ है उसे। कबीर की बात सुनकर अर्णव कुछ पल खामोश रहा, फिर गहरी सांस छोड़ते हुए बोला, कुछ ज्यादा ही बुखार था उसे और पैर भी जख्मी है, अभी भी होश में नहीं है और उसे इस हालत में छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकता। अर्णव की आंखों में इस वक्त धृति के लिए परवाह झलक रही थी, जो कबीर से भी छुपी न रह सकी। अर्णव धृति के बारे में ही सोच रहा था जब उसके कानों में कबीर के शब्द पड़े, अर्णव कल पार्टी में तूने क्या किया धृति के साथ? अर्णव ने उसका सवाल सुनकर चौंकते हुए उसे देखा तो कबीर चेहरे पर गंभीर भाव लिए उसे ही देख रहा था। अर्णव ने तुरंत ही इनकार में सिर हिलाते हुए जवाब दिया, कुछ नहीं किया मैंने कल उसके साथ। फिर तुम्हारे बीच ऐसा क्या हुआ कि धृति की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई? ऐसा तो है नहीं कि रातों रात उसे अचानक बेवजह ही इतना तेज बुखार आ जाए। कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थी। मतलब कल रात कुछ तो ऐसा हुआ है जिसके वजह से उसकी तबीयत इतनी खराब हो गई। कबीर अब भी काफी सीरियस लग रहा था। उसकी बातें सुनकर अर्नव को वो सब याद आ गया जो कल पार्टी में और वहाँ से आने के बाद उनके बीच हुआ। कबीर बड़े ही ध्यान से उसके चेहरे के पल पल बदलते भावों को नोटिस कर रहा था, जिससे वो इतना तो समझ गया था कि कल कुछ तो गलत हुआ है। पर क्या ये उसके समझ से परे था? और अब वो अर्नव से जवाब का इंतजार कर रहा था। अर्नव ने मन ही मन सब बातें दोहराने के बाद कबीर को देखा और गहरी सांस छोड़ते हुए गंभीरता से बोला, किसी बात पर हमारी बहस हो गई थी जिसके बाद मैं गुस्से में कमरे से चला गया और शायद धृति सारी रात बारिश में भीगती रही। इससे ज्यादा मैं तुझे अभी कुछ नहीं बता सकता, इसलिए मुझसे और कोई सवाल मत करना। मैं आज ऑफिस नहीं आऊँगा तो सब काम संभाल लेना। कबीर समझ गया था कि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, अर्नव कुछ तो छुपा रहा है उससे। पर जब अर्नव अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता तो कबीर ने इंतजार करना बेहतर समझा कि जब अर्नव को ठीक लगेगा वो खुद उसे पूरी बात बता देगा। यही सोचते हुए कबीर ने आगे कोई सवाल नहीं किया, आगे बढ़कर उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्के से थपथपाते हुए बोला, यहाँ मैं सब संभाल लूंगा, तू बस धृति का ध्यान रखना और अपने गुस्से को खुद पर हावी मत होने देना। वो ठीक नहीं है तो थोड़ा प्यार से पेश आना उसके साथ। अर्नव ने पलटकर कोई जवाब नहीं दिया। कबीर वहाँ से चला गया तो अर्नव भी वापस सीढ़ियों की ओर मुड़ा, तभी उसके कानों में शीला की आवाज़ पड़ी, सर नाश्ता, अभी भूख नहीं है मुझे। अर्नव ने उसकी बात काटते हुए जवाब दिया और वापस कमरे में चला आया। धृति अब बेहोश नहीं थी बल्कि गहरी नींद में सो रही थी। अर्नव उसके बगल में आकर बैठ गया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए एक टक उसके चेहरे को देखते हुए सब बातों के बारे में सोचने लगा। देखते ही देखते दोपहर के एक बज गए। अर्नव को अब कहीं जाकर धृति के शरीर में कुछ हलचल महसूस हुई। ये देखते ही वो उससे दूर खिसक गया और उठकर सीधे कमरे से बाहर निकल गया ताकि शीला को उसके लिए कुछ बनाने को बोल सके। कुछ ही मिनट बाद धृति ने अपनी पलकें फड़फड़ाते हुए अपनी आंखें खोली और नज़र सीधे छत पर गई। कुछ देर तक वो अध खुली आंखों से छत को घूरती रही, फिर बिस्तर से सहारा लेकर उठकर बैठ गई। बुखार भले उतर गया था पर कमजोरी अब भी थी। उसने नजरें घुमाकर पहले कमरे को देखा, फिर खुद को देखा। उसे याद आया कि बीती रात वो पूल के किनारे पार्टी वाले कपड़ों में थी। फिर यहाँ कब और कैसे आई? कपड़े कैसे बदल गए और इतनी कमजोरी क्यों महसूस हो रही है उसे? वो अपने दिमाग पर जोर डालते हुए इन्हीं सब सवालों के बारे में सोच रही थी जब उसके कानों में दरवाजे के खुलने की आवाज़ आई, जिसने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। धृति ने निगाहें घुमाई तो उसकी नज़र अर्नव पर पड़ी जो कमरे के अंदर दाखिल हो रहा था। अर्नव पर नज़र पड़ते ही उसे बीती रात की सभी बातें एक एक कर याद आने लगीं। कल पार्टी और उसके बाद जो हुआ सब किसी चलचित्र की भांति उसकी आंखों के सामने चलने लगा। धृति, तुम अब ठीक हो? धृति के कानों में अर्नव की चिंता भरी सॉफ्ट आवाज़ पड़ी। तब कहीं जाकर वो उन दर्द भरी यादों से बाहर आई और देखा तो अर्नव फिक्रमंद निगाहों से उसे ही देख रहा था। उसे अपने लिए परेशानी होते देखकर धृति के लबों पर दर्द भरी मुस्कान उभर आई। हाँ, जिंदा हूँ अब तक, इतना सब होने के बाद भी नहीं मरी। धृति, अर्नव उसका जवाब सुनकर व्याकुलता से कुछ बोलने को हुआ, पर धृति ने उसकी बात काटते हुए रुंधे स्वर में आगे कहा, क्यों मेरी इज्जत को अपने अहंकार तले रौंद दिया? क्यों मेरी अस्मत को तार तार कर दिया अपने गुरूर को बनाए रखने के लिए? क्यों भरी महफिल में मुझे शर्मिंदा किया? क्यों करते हैं आप मुझसे इतनी नफरत जो अब मुझसे सही नहीं जाती? क्यों मुझ पर, मेरी सच्चाई पर विश्वास नहीं करते आप? क्यों मुझे मेरे सवालों का जवाब नहीं देते आप? क्यों नहीं करते मुझ पर भरोसा कि मैं वैसी लड़की नहीं हूँ जैसा आप मुझे समझते हैं? धृति आंखों में बेइंतहा मोतियों को कैद किए चेहरे पर असीम पीड़ा और दर्द लिए बेबसी भरी निगाहों से उसे देखने लगी। लगातार इतना बोलने से उसकी सांसें फूलने लगीं। धृति के सवाल सुनकर अर्नव कुछ परेशान हो गया और उसकी हालत देखकर चिंता भरे स्वर में बोला, धृति बस तुम्हारी तबीयत पहले ही खराब है, इन बेकार की बातों के बारे में सोचकर खुद को और तकलीफ मत पहुंचाओ। मेरी तकलीफ से आपको फर्क पड़ रहा है या दुख हो रहा है कि अब मुझे खुद से दर्द नहीं दे सकेंगे, इसलिए मेरी फिक्र दिखा रहे हैं ना, ताकि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और आप फिर से मुझे टॉर्चर करना शुरू कर सकें। धृति ने आज वही बात कही जो पहले कई बार अर्नव ने उसे बताई थी, पर आज धृति के मुंह से वही बात सुनकर जाने क्यों पर अर्नव को अपने दिल में कुछ चुपता हुआ सा महसूस हुआ और वो मौन साधे लाचारी से उसे देखता रहा। अर्णव को खामोश देखकर धृति ने आगे कहा, मेरे हिस्से में हमेशा या तो आपके इल्ज़ाम, कड़वी बातें आती हैं या फिर ये खामोशी। एक अनकहा सा दर्द समाया था इन लफ्ज़ों में, जिसे अर्णव ने भी महसूस किया। धृति, कल जो भी हुआ वो अनजाने में बिल्कुल नहीं था। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया था। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ ऐसा कुछ भी होगा। अर्णव ने फिर दिल के हाथों मजबूर अपनी सफाई पेश की, जिसे सुनकर धृति हौले से मुस्कुरा दी, जैसे खुद का ही मजाक उड़ा रही हो। कुछ नया भी तो नहीं हुआ, आपके शब्द और आपकी भाषा ही तो उन्होंने इस्तेमाल की थी। जो सोच आप रखते हैं वही मानसिकता तो उनकी भी थी मुझे लेकर। आप भी तो वक्त बेवक्त बस मुझे बेइज्जत करते हैं, जलील करते हैं। आपका वही अधूरा काम कल उन लोगों ने पूरा कर दिया। मैं तो हूँ ही इसीलिए, हर बार बिना किसी दोष के सबके इल्ज़ाम सुनती हूँ और सज़ा भी हमेशा मेरे ही हिस्से आती है।
धृति के चेहरे पर गहरी उदासी छा गई और दर्द आँखों से आंसुओं बनकर छलक आया। अर्णव को लगा जैसे ये शब्द सिर्फ उसके लिए नहीं थे, जैसे इन शब्दों के पीछे बहुत से गहरे राज छुपे हैं, जैसे दर्द सालों पुराना है। वो कुछ पल खामोश सा धृति को देखता रहा, फिर उसके पास आकर बैठ गया और उसके आंसुओं को अपनी हथेलियों से पोंछते हुए बोला, कल पार्टी में जो भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे तुम्हें वहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मेरी वजह से तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा। मुझे तुम पर विश्वास है। मैं भरोसा करता हूँ तुम पर कि तुम वैसी नहीं हो जैसा मैंने तुम्हें समझा था। शायद मुझे ही तुम्हें लेकर कोई गलत फहमी हो गई थी। मैं दोबारा कभी तुम्हें अपने शब्दों से तकलीफ़ नहीं पहुँचाऊँगा। तुम पर ऐसे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा जिससे तुम्हारा मन आहत हो या तुम्हारे दिल को ठेस पहुँचे। मैं दोबारा कभी तुम्हारे चरित्र पर सवाल नहीं उठाऊंगा। बस तुम शांत हो जाओ।